ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। गलत काम में शामिल चाहे कोई भी हो उसे नहीं बख्शा जाएगा, सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग का कथन। अख्तियार के कार्यक्षेत्र में निजी क्षेत्र को न समेटने का सांसदों ने दिया सुझाव। बागलों के व्यारथला में पिकअप दुर्घटना में मरने वाले सभी 5 लोगों की हुई शिनाख्त। और भारत के मणिपुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 संदिग्ध चरमपंथियों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि देश के आर्थिक सुधार और संविधान संशोधन के विषय में आवश्यक राय मशवरा चल रहा है। विराटनगर विमानस्थल से निकलने के दौरान प्रधानमंत्री ओली ने व्यस्तता और समय अभाव को कारण बताते हुए पत्रकारों के साथ बाद में बातचीत करने की बात कही। आज ही बीबी कोयराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के 13वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि नेपाल के स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सक विद्यार्थियों का कोटा बढ़ाने और इस क्षेत्र को प्रभावकारी और सुशासन युक्त बनाने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि पड़ोसी देश भारत में उत्पादित और परीक्षण की हुई सिकल सेल की दवा लाकर नेपाल के मरीजों को वितरित किया जाएगा। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बीच संक्षिप्त भेंट हुई। अजरबैजान के बाकू में जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासंधि पक्ष के राष्ट्रों के 29वें सम्मेलन COP29 में भाग लेने के लिए कतर के दोहा से अजरबैजान के बाकू जाने के दौरान विमान में उनके बीच भेंट हुई। इस दौरान उनके बीच जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न समस्याओं पर संक्षिप्त बातचीत हुई। ये जानकारी राष्ट्रपति पोडेल के प्रेस सलाहकार किरण पोखरेल ने दी। आज से शुरू हुए जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासंधि पक्ष के राष्ट्रों के 29वें सम्मेलन COP29 में उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए राष्ट्रपति पोडेल कतर के दोहा होते हुए बाकू पहुंचे हैं। COP29 सम्मेलन में राष्ट्रपति पोडेल ने उच्च स्तरीय सत्र के वैश्विक नेताओं के जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन को संबोधित करने का कार्यक्रम है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि समाज और राजनीतिक क्षेत्र में मौजूद भ्रष्टीकरण और अपराधीकरण को रोकने को लेकर वर्तमान सरकार दृढ़ है। कल रविवार को हुई मंत्रिपरिषद बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज संचार मंत्रालय में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री गुरुंग ने ये बात कही। पत्रकारों की जिज्ञासा पर उन्होंने कहा कि समाज में मौजूद गलत कामों पर रोकथाम और नियंत्रण करने को लेकर सरकार निरंतर क्रियाशील है। उन्होंने कहा कि कोशी प्रदेश के कानून मंत्री के खिलाफ आगे बढ़ाई गई कार्रवाई इस बात का संकेत है कि गलत क्रियाकलाप में शामिल चाहे कोई भी हो उसे नहीं बख्शा जाएगा। सरकार ने डेडिकेटेड फीडर और ट्रंक लाइन से उपभोग की गई बिजली की बकाया राशि 15 दिनों के भीतर वसूलने का फैसला किया है। सिंहदरबार स्थित मंत्रालय में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रचलित कानून के आधार पर खपत हुई बिजली यूनिट की गणना कर 15 दिनों के अंदर वसूली करने का निर्णय किया गया है। इस बात का जिक्र करते हुए कि बिजली आपूर्ति बंद करने से अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, संचार मंत्री गुरुंग ने कहा कि जिन उद्योगों में बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है वहां 24 घंटे के भीतर बिजली लाइन जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह संचार मंत्री गुरुंग ने कहा कि बैठक ने बिजली महसूल से संबंधित विवाद को सुलझाने के लिए जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय को अनुमति देने का निर्णय किया है। मंत्रिपरिषद बैठक ने भंसार महसूल नियमावली 2081, राजधानी द्वितीय संशोधन नियमावली 2081 स्वीकृत करने और विभिन्न देशों से प्राप्त होने वाली सहायता रकम स्वीकृत करने लगाए अन्य निर्णय भी किए। ये जानकारी मंत्री गुरुंग ने दी। बागलुंग की जयमिनी नगरपालिका वार्ड नंबर 8 छिस्ती से जिला मुख्यालय बागलुंग बाजार की ओर जा रही पिकअप वैन की दुर्घटना में मरने वाले सभी 5 लोगों की पहचान हो गई है। जिला प्रहरी कार्यालय बागलुंग के सूचना अधिकारी इंस्पेक्टर केशव थापा ने बताया कि जयमिनी 7 जैदी और छिस्ती की सीमा के पास आज सुबह एक पिकअप वैन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में वैन के चालक बागलुंग जयमिनी 8 छिस्ती केवई के 38 वर्षीय महेंद्र पुन, 20 वर्षीय रश्मि श्रीश, 50 वर्षीय नंदकली पुन, 17 वर्षीय नीरज श्रीश और 75 वर्षीय कुल प्रसाद श्रीश शामिल हैं। वैन सड़क से 500 मीटर से काफी नीचे गिरी थी। नेकपा माओवादी केंद्र ने आगामी मार्गशीर्ष 16 गते होने वाले उपनिर्वाचन के लिए निचली कमेटियों से सिफारिश किए गए उम्मीदवारों के नाम अनुमोदित किए हैं। नेकपा माओवादी केंद्र की आज की केंद्रीय कार्यालय बैठक ने आगामी स्थानीय उपनिर्वाचन के लिए प्रदेश और जिला कमेटियों से सिफारिश किए गए उम्मीदवारों के नाम अनुमोदित किए। ये जानकारी पार्टी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा ने दी। बैठक ने चुनाव में सफलता हासिल करने की योजना और कार्यक्रम बनाने के लिए नेता कार्यकर्ताओं से आग्रह भी किया है। माओवादी केंद्र ने आगामी पोष 2 गते को केंद्रीय समिति की बैठक बुलाने का निर्णय भी किया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हाँ त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14# ह्यास डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग को शक्ति संपन्न, निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाए जाने की बात पर सांसदों ने जोर दिया। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग आईन 2048 को संशोधित करने के लिए बने विधेयक पर विचार विमर्श के दौरान संशोधन के आकांक्षी सांसदों ने कहा कि अख्तियार पर राजनीति का साया नहीं पड़ना चाहिए। सांसदों ने यह भी कहा कि सरकारी निकायों में हो रहे भ्रष्टाचार के मामलों का प्रभावकारी अनुसंधान नहीं हो रहे मौजूदा स्थिति में अख्तियार के कार्यक्षेत्र में निजी क्षेत्र को समेटने से देश का अर्थतंत्र धराशायी हो जाएगा। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाशमान सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय विभूति एवं नेपाल संवत के प्रवर्तक शंखधर साखुआ से नेपाली समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए। शंखधर साखुआ दिवस के अवसर पर नेपाल संवत नू द राष्ट्रीय समारोह समिति द्वारा आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री सिंह ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि साखुआ ने तत्कालीन नेपाली समाज में सामाजिक सुधारक के रूप में अतुलनीय योगदान किया था। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि नेपाल और भारत के बीच संबंध बहुआयामी और मजबूत हैं। बाग बाजार के काठमांडू मॉडल कॉलेज में आज आयोजित भारत नेपाल फ्रेंडशिप समिट 2024 ग्लोबलाइजेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कार्यक्रम में मंत्री गुरुंग ने कहा कि यदि नेपाल और भारत के बीच शैक्षिक संबंध मजबूत होते हैं तो इससे ज्ञान के आदान प्रदान में आसानी होगी और दोनों देशों के बीच कौशल आदान प्रदान सहज होगा। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देववा ने कहा कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बीते 3 दशकों में काफी सारी उपलब्धियां हुई हैं। यूएन वुमन द्वारा आज राजधानी में आयोजित बीजिंग प्लस 30 की सिविल सोसाइटी रिपोर्ट साझा करते हुए मंत्री डॉ राणा ने यह बात कही। निर्वाचन आयोग ने स्थानीय तय उप निर्वाचन के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृत तय किए हैं। आयोग के सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद सापकोटा के अनुसार मार्गशीर्ष 16 गते होने जा रहे स्थानीय तह उपनिर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकृत नियुक्त किए गए हैं। स्थानीय तह निर्वाचन आयन 2073 के मुताबिक तय कार्यतालिका के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकृत और निर्वाचन अधिकृत नियुक्त किए गए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय राज्य मणिपुर के जिरीबाम जिले में आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के जवानों के साथ हुई एक मुठभेड़ में 10 संदिग्ध चरमपंथियों की मौत हो गई है। इस मुठभेड़ में CRPF का एक जवान भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये मुठभेड़ दोपहर के करीब 3 बजे जिरीबाम शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर बोरो बेकरा थाना क्षेत्र के पास एक ग्रामीण इलाके में हुई। जानकारी के मुताबिक बोरो बेकरा थाना क्षेत्र के जकुरा डोर करोंग इलाके में आज सुबह से कुछ संदिग्ध हथियारबंद चरमपंथियों ने कई हमले किए थे। उन्होंने उस गांव में खाली पड़ी कई दुकानों और घरों में आग लगा दी जहां ज्यादातर मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। उस इलाके में स्थित CRPF के एक कैंप को जब चरमपंथियों ने निशाना बनाने की कोशिश की तो दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मुठभेड़ में मारे गए युवक कुकी समुदाय के चरमपंथी हैं, जबकि कुकी जनजाति के सबसे बड़े संगठन कुकी जो काउंसिल ने इन लोगों को लोकल वॉलंटियर बताया है। कुकी जनजाति के प्रमुख संगठन कुकी जो काउंसिल ने मुठभेड़ की घटना पर दुख जताते हुए पीड़ितों के सम्मान में सामूहिक दुख और एकजुटता व्यक्त करने के लिए कल सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक कुकी बहुल इलाकों में पूर्ण बंद की घोषणा की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गलत काम में शामिल चाहे कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग का कथन। अख्तियार के कार्यक्षेत्र में निजी क्षेत्र को न समेटने का सांसदों ने दिया सुझाव। बागलों के व्यारथला में पिकअप दुर्घटना में मरने वाले सभी 5 लोगों की हुई शिनाख्त। और भारत के मणिपुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 संदिग्ध चरमपंथियों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।